के यूं तो हम सारे पलकों में पलते बच्चे हैं, पर आपको वो बेहद प्यारे जो दिल के सच्चे सच्चे हैं।
आपके यूं तो हम सारे पलकों में पलते बच्चे हैं, पर आपको वो बेहद प्यारे जो दिल के सच्चे सच्चे हैं।
सच्चे दिल पर साहब राजी, हर श्रीमत पर कहे हाँ जी, एक बाबा तू जान कोई वादे के पक्के पक्के हैं।
प्रभु आपके यूं तो हम सारे पलकों में पलते बच्चे हैं, पर आपको वो बेहद प्यारे जो दिल के सच्चे सच्चे हैं।
खुशियों में नाचते रहते हैं।
प्रभु आपके यूं तो हम सारे पलकों में पलते बच्चे हैं, पर आपको वो बेहद प्यारे जो दिल के सच्चे सच्चे हैं।
सच्चा साफ रहे निर्मल निश्चल जीवन वाले प्रभु को लगते अच्छे हैं।
प्रभु आपके यूं तो हम सारे पलकों में पलते बच्चे हैं, पर आपको वो बेहद प्यारे जो दिल के सच्चे सच्चे हैं, जो दिल के सच्चे सच्चे हैं, जो दिल के सच्चे।
ओम शांति। किसी एक शहर में एक व्यक्ति रहता था। जो सुबह जब काम के लिए बाहर जा रहा था तो उसके बच्चों ने उससे कहा कि हमें खिलौने चाहिए, हमें ट्रेन चाहिए, हमें डॉल चाहिए और ढेर सारी बातें बताई कि हमें ऐसे ऐसे खिलौने चाहिए। और उस व्यक्ति ने कहा कि मैं वादा करता हूं कि खिलौने लाऊंगा, और वो गया। परंतु इतना व्यस्त हो गया अपने काम में कि वो लाना ही भूल गया। पर जब घर पहुंचा तो एक आश्चर्य चकित करने वाली घटना थी, एक डरावनी घटना। देखा कि उसका पूरा घर जल रहा है, घर को आग लग गई है, कोलाहल है, लोग यहां वहां भाग रहे हैं। और किसी ने कहा कि आपके बच्चे सब घर के अंदर है और उनको हम कब से कह रहे हैं बाहर आ जाओ बाहर आ जाओ, पर वो सुन नहीं रहे, उनको बहुत मजा आ रहा है। आग के बीच में है और शायद बच्चों ने आग कभी देखी नहीं तो उनको बहुत अच्छा लग रहा है, इतनी अच्छी आग। लोगों ने उनसे कहा दरवाजा खोलो, क्योंकि दरवाजा अंदर से बंद था। परंतु वो बच्चे सुनने को तैयार न थे। जब वो पिता पहुंचा, उस पिता ने अपने बच्चों से कहा बच्चों बाहर आओ। उन्होंने कहा नहीं पापा, हमको यहां बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मजा आ रहा है। फिर पिता दरवाजे के पास पहुंचा और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे लिए अच्छे अच्छे खिलौने लाया हूं जो तुमने कहे थे, क्या तुम्हें ये खिलौने नहीं चाहिए? डॉल है, ट्रेन है, घर है और बहुत सारी चीजें हैं। जैसे ही बच्चों ने सुना खिलौने, तो उन बच्चों ने दरवाजा खोला, वो बाहर आए और वो व्यक्ति उन बच्चों को लेकर बाहर आ गया और बाद में उनसे कहता है मुझे क्षमा कर देना, आई एम सॉरी, मैं तुम्हारे लिए खिलौने नहीं लाया और मैंने झूठ बोला। तो क्या ये झूठ पाप है? क्या कहेंगे? क्या ये झूठ पाप है? झूठ की क्या परिभाषा है और सत्य की क्या परिभाषा है? जो पिता ने कहा वो झूठी कहा कि खिलौने लाया हूं, वो तो सत्य था नहीं, तो क्या कहा जाएगा? पर झूठ तो झूठ है, चाहे भलाई के लिए बोला जाए या कितनी अच्छे तरीके से बोला जाए। यज्ञ की शुरुआत में सत्यम शिवम सुंदरम स्वयं परमात्मा बाबा ने कई बार कहा, अगली दिवाली तुम नहीं देखोगे, तो क्या उसने झूठ बोला? क्या कहेंगे? वो जो सत्य व्रतम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्य, वो जो परम सत्य है, जो सत्यों का सत्य है, ट्रुथ ऑफ ट्रुथ, उसने कहा था कि अगली दिवाली तुम नहीं देखोगे, पर तो देखी, तो क्या कहेंगे? क्या उसने झूठ कहा? विचारणीय बात है। सत्य क्या है, असत्य क्या है और किस परिस्थिति में, किस समय, किस स्थान पर वो बोला जाए, उसके आधार से ये निश्चित होता है वो पाप है या पुण्य है। जीवन में ये जान लेना सत्य क्या है, असत्य क्या है, सार क्या है, असार क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, लंबी यात्रा है सत्य तक पहुंचना, सत्य को वैसा ही जानना जैसे सत्य है। इस संसार का शायद ही कोई ऐसा धर्म है जिसने सत्य की चर्चा ना की हो। जैन धर्म के महाव्रत जो पांच है उनमें से एक सत्य है। हिंदू धर्म में यम में पांच यमों में एक सत्य है। उपनिषद गाते हैं सत्यमेव जयते। लास्ट संडे की मुरली सत्य सूर्य की भांति है जिसे कोई भी ढक नहीं सकता। असत्य के बादल सत्य के सूर्य को ढक नहीं सकते। सत्य को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं, सत्य कैसा है, स्वयं सिद्ध है। यदि कोई असत्य बोलता है और तुम्हें जोश आता है तो ये जोश भी तो असत्य है, भगवान के महावाक्य है। तो तो आज हम चर्चा करेंगे सत्य क्या है, झूठ क्या है, झूठ के कितने प्रकार हैं, सत्य के लिए बाबा ने क्या कहा है, सत्य पर बनी हुई कौन कौन सी कहावतें हैं, सत्य से क्या क्या फायदे होते हैं, सत्य क्या है और सत्य क्या है दो शब्द है, इन दोनों में अंतर क्या है, और आज सुबह की सारी अव्यक्तवाणी। कौन किसको देख रहा है, सुबह की मुरली कौन किसको देख रहा है, कौन किसको देख रहा है, सर्वशक्तिवान बाप देख रहा है दो चीजों को, एक है राज्य सत्ता और दूसरी है ईश्वरीय सत्ता। जो राज्य सत्ता है वो हलचल में है, जो राज्य सत्ता है वो अराजकता में है, जो राज्य सत्ता है वो हिल रही है, वैमनस्य है, द्वंद है, संघर्ष है राज्य सत्ता में। जो संसार में है उसको भी बाबा देख रहे हैं, और एक दूसरी सत्ता भी है उसको भी भगवान देख रहा है, वो कौन सी है, ईश्वरीय सत्ता, जिसको बाबा ने सत्य कहा। सत्य की, सत्यता की अथॉरिटी कहा। महात्मा गांधी ने अपना सारा जीवन एक प्रयोगशाला बना दिया, और उन्होंने लिखा है कि मैंने अपने जीवन में सारी उम्र क्या किया है, सत्य के साथ प्रयोग किए हैं। जीवन कहानी का नाम भी सत्य के प्रयोग, सत्य के प्रयोग ही रखा, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ। सत्य के ही प्रयोग किए, बचपन की बातें लिखी, चोरी की, घर का जो नौकर था उसकी जेब से पैसे चुराए, बीडीपी, मांसाहार किया, छुप छुप के किया, पिता को नहीं बताया, और फिर पश्चाताप भी किया, और फिर रोए भी, खत भी लिखा, और आंसुओं से भर गया खत जब पिता ने वो खत पढ़ा। बचपन में उन्होंने एक नाटक देखा, हरिश्चंद्र, एक राजा सत्य की अपनी प्रतिज्ञा के लिए अपना सर्वस्व दांव पर लगा देता है, अपनी पत्नी तक को बेच देता है, स्वयं को बेच देता है, अपने बेटे को बेच देता है, सर्वस्व राज्य त्याग कर देता है, परंतु सत्य की प्रतिज्ञा को नहीं छोड़ता। ऐसे सत्यता का प्रतीक हरिश्चंद्र की कहानी जब इस बालक ने सुनी और देखी, वो उसके मनोमस्तिष्क में, अवचेतन मन में बिंबित हो गई, और आगे जाकर सत्य और अहिंसा के प्रयोग बने, और जिसने देश और विश्व की दिशा और दशा बदल दी। सत्य में ऐसी पावर, ऐसी शक्ति है। बाबा ने पूछा है प्रश्न, स्वयं को चेक करो, स्वयं का विश्लेषण करो, मैंने अपने जीवन में सत्य को कितना धारण किया है, दृष्टि में, वृत्ति में, बोल में, कर्म में, चलन में, संबंध में, संपर्क में, कल्पनाओं में, सुनने में, देखने में, खाने में, पीने में, भावनाओं में, दृष्टि, वृत्ति, दृष्टिकोण में, संस्कारों में, आदतों में, पैसों में, बुद्धि में, लिखने में, सुनने में, क्या सत्य की धधकती आग है या झूठ है, असत्य है, क्या है, यह प्रश्न पूछा है बाबा ने। तो सत्यता की अथॉरिटी, पूरी मुरली में सत्यता की 10 बातें हैं जिनकी हम चर्चा करेंगे। जो दसवीं बात है वो है सत्यता की निशानियां, छह निशानियां। शुरुआत उस दसवीं बात से करते हैं। सत्यता की क्या क्या निशानियां हैं, जो व्यक्ति सत्य है उसकी क्या क्या निशानियां हैं, छह निशानियां गिनाई हैं। सबसे पहला वो निर्भय होगा। झूठ के कुछ नुकसान हैं, क्या क्या? एक छोटा बच्चा है और एक छोटी बच्ची है, दोनों खेल रहे हैं। सुना होगा आपने, जो बच्चा है उसके पास बहुत सारे कंचे हैं और जो लड़की है छोटी उसके पास मिठाइयां हैं। वो लड़का कहता है कि तुम मुझे अपनी मिठाइयां दे दो, मैं तुम्हें अपने कंचे दूंगा। वो कहती है ठीक है। वो बच्चा, बच्चे के पास कंचे, बच्चे के पास मिठाइयां, वो बच्चा सबसे बड़ा जो कंचा है वो रख देता है अपने पास और वो जो बच्ची होती है अपनी सारी मिठाइयां उसको दे देती है और दोनों आप अपने घर जाते हैं। जो बच्ची है वो रात में सो जाती है निश्चिंत होकर, पर ये जो बच्चा है बेचैन है, वो ये सोच रहा है शायद उसने भी सबसे बड़ी मिठाई मुझे नहीं दी है। असत्य में बेचैनी है, असत्य में झूठ है, असत्य में झूठ में बहुत याद रखना पड़ता है। असत्य का दोष क्या है, बहुत याद रखना पड़ता है। असत्य का दोष क्या है, अलग अलग लोगों को अलग अलग कहानियां बतानी पड़ती है। एक ही कहानी सबको नहीं बताई जा सकती क्योंकि असत्य बहुरूपी है, अलग अलग लोगों को अलग अलग कहानियां बतानी पड़ती है। और जो सत्य है वो सत्य है ही, उसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। ये दूसरा। तीसरा, असत्य बेचैनी उत्पन्न करता है। चौथा, असत्य में डिफेंसिव होना होता है, स्वयं को सिद्ध करना पड़ता है बार बार। सत्य में सिद्ध करने की बहुत अधिक आवश्यकता नहीं है, परंतु असत्य में व्यक्ति डिफेंसिव होता है। अगर कोई आरोप आक्षेप लगाए तो तुरंत तलवार लेकर खड़ा हो जाता है कि नहीं मैं ऐसा नहीं हूं, तुमने गलत सुना, किसने सुनाया, किसने बताया। अगला, असत्य शुरुआत में बहुत सहज होता है, बाद में बहुत मुश्किल हो जाता है। और सत्य जो है शुरुआत में बोलते समय बहुत कठिन है परंतु बाद के लिए सहज हो जाता है। यह अंतर है सत्य और झूठ में, सत्य और असत्य में। और असत्य बार बार बोलने से संस्कार बन जाता है। यह सबसे बड़ा दोष है, सबसे बड़ी खोट है असत्य में कि बार बार बोलते रहो, बार बार बोलते रहो। पहली बार अंतर्मन रोकता है, नहीं नहीं, पर बार बार बोलने से, बार बार बोलने से क्या हो जाता है, असत्य की आदत पड़ जाती है। और असत्य की अंततः हार होती है। असत्य का चिरस्थाई स्वरूप नहीं है। बाबा ने कहा असत्य की जो नाव है हिचकोले नहीं खाती है, सीधा डूबती है। असत्य में भय है, असुरक्षा है। और असत्य में दुख है, पीड़ा है, डर है किसी को पता ना चल जाए। झूठ आठ प्रकार के होते हैं। सबसे पहला व्हाइट लाए, व्हाइट लाए अर्थात सफेद झूठ, व्हाइट लाए अर्थात छोटा मोटा झूठ, अनइंटेंशनल, फोन पर बोले हुए झूठ, डिजिटल झूठ, कहां हो है घर पर, बता रहे कहीं और। छोटे 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 झूठ, उसको कहते हैं व्हाइट लाए, पर है वो भी झूठी। उसके बाद है एग्जैजरेशन, अतिशयोक्ति, बढ़ा चढ़ा कर बताना। हम भाषण देने गए थे 50 लोग और बताना 200-300 लोग थे, और बहुत सेवा हो गई। देखने वाला तो कोई था नहीं, वहां जिसके सामने बता रहे वो लोग वहां थे नहीं। इससे किसी का नुकसान भी नहीं हुआ, पर सत्य से छेड़छाड़ जरूर हुई। इसको कहते हैं एग्जैजरेशन, अतिशयोक्ति, बड़ा चढ़ाकर बताना। बाबा ने कहा सेवाओं का विस्तार करो, परंतु विस्तार का वर्णन करो तो मार्क कट जाएंगे। कुछ मास पहले एक वरदान था जिसमें यह था गंभीर भव। अप्रैल मास में एक वरदान आया था साकार मुरली में, गंभीरता की देवी और गंभीरता के देव भव में। जितना अधिक वर्णन उतने मार्क्स कट। ये दूसरा, उसके बाद है कंपल्सिव लाइंग, जिसको कहते हैं जबरदस्ती व्यक्ति झूठ बोलते रहता है, या आदतन झूठ, आदत ही पड़ गई है हर चीज में झूठ, और वो झूठ इस कलाकारी से बोलता है कि पता ही नहीं चलता ये झूठ है। महारत हासिल है झूठ बोलने में, कंपल्सिव लाइंग जिसको कहते हैं। उसके बाद है डिसेप्शन, धोखा, वो भी झूठ का प्रकार है एक, धोखा। उसके बाद है प्लेग्यारिज्म, प्लेग्यारिज्म अर्थात चोरी भी करना और झूठ भी, दोनों साथ साथ है। किसी दूसरे का अनुभव बताना ऐसा कि मेरा अनुभव है, किसी दूसरों को अनुभव हुआ बाबा की मदद का या प्यार का, और बताना कि मुझे हुआ है। किसी का चिंतन पर वहां से उधार लेना और बताना ये मेरा है। वैसे कॉपी अलाउड है, पर किसको कॉपी कर रहे हैं ये भी देखना है। प्लेग्यारिज्म, लिटरेचर की चोरी है, किसी की बुक अपने नाम से पब्लिश, यहां से मैटर, वहां से मैटर, वहां से मैटर, वो भी झूठ है। उसके बाद है फैब्रिकेशन, मनगढ़ंत कहानियां बनाना, अजीबोगरीब कहानियां बनाना अपने फायदे के अनुसार। सुविधाजनक श्रीमत, फिलॉसफी ऑफ कन्वीनियंस, श्रीमत को थोड़ा ठीक ठाक करना, रिपेयर, ठीक नहीं लग रहा है, ये काम का नहीं है, इसको हटाओ, हाँ अब ठीक है, ये मेरे लेवल का है, अब ठीक है। फैब्रिकेशन, ये भी झूठ का एक प्रकार है, मनगढ़ंत कहानियां। उसके बाद है ब्रोकन प्रॉमिसेस, वादा करना मैं आऊंगा, बहन जी ने बुलाया है, हमने कहा हम पहुंच जाएंगे, और वहां इंतजार चल रहा है और हम गायब। वादा किया पर निभाया ही नहीं, हाजी बहुत बड़ी श्रीमती इस यज्ञ में है, परंतु जब पता है कि हम करने ही वाले नहीं है तो झूठ मूठ हाजी कहना और फिर वो सेवा सफर होना बोझ चढ़ेगा। अच्छा होता कि पहले बता दिया था कि नहीं आऊंगा, किसी और को सेवा दी गई होती, अच्छा होता, तुम्हारे भरोसे पर रुक गए, ब्रोकन प्रॉमिसेस। प्रॉमिस करना, वादा करना और मुकर जाना झूठ का प्रकार है, तो ये सारे झूठ के प्रकार है। तो हम बात कर रहे थे दसवीं पॉइंट, टोटल दस बातें हैं मुरली में। दसवीं बात सत्यता की निशानियां, छह निशानियां सुनाई। सबसे पहले जो सत्य होगा उसमें क्या होगा, निर्भयता होगी, उसको किसी बात का डर नहीं है, जो है वो है, डरने की कोई बात नहीं है उसमें। दूसरी, निश्चिंत होगा, बेफिक्र होगा। और तीसरा, नाचेगा। कौन सा उदाहरण दिया नाचने के लिए, किसका उदाहरण दिया? सच तो बेटा में उदाहरण किसका दिया, मुरली में किसका उदाहरण आया? अंगना भाई, मुरली में किसका उदाहरण दिया? कालिया मर्दन। किसका उदाहरण दिया? कालिया मर्दन का। बाबा ने कहा जहरीला वायुमंडल हो, विकराल परिस्थितियां हो। लिख के रखना है चारों बातें, जहरीला वायुमंडल, विकराल परिस्थितियां, परेशान करने वाले संबंध संपर्क, भयानक परिस्थिति, विकराल माया, ये चार बातें हो, इनमें भी इनको क्या कर देना, शैया बना देना। जहरीला वायुमंडल, भयंकर भयानक परिस्थितियां, विकराल माया और परेशान करने वाले लोग आसपास जो बैठे हैं, हमारे जहां हम रहते हैं, जिन्होंने ये व्रत लिया है, कौन सा, अपना स्वयं का ज्ञान और योग का त्याग कर हमें संपूर्ण बनाने का जिन्होंने व्रत लिया है, अपनी अपनी ग्रेजुएशन की स्टडी छोड़कर जो हम पर पीएचडी कर रहे हैं, किसमें लगे हुए हैं, हम पर पीएचडी करने में, कहां हमारे दोष है, कहां खामियां है, कहां हम गलती करते हैं, कहां बोलने में गड़बड़ कर दी, एक एक बात पर। कितना बड़ा त्याग है, अपना ज्ञान योग छोड़कर जो हमारी सेवा में लगा है, निंदा करके, निंदा करने में लगा है, ग्लानी करने में लगा है, धोखा देने में लगा है, अविश्वास करने में लगा है, अपमान करने में लगा है, वो चाहता है कि मूर्ति एकदम फर्स्ट क्लास बने, उसे खुशी नहीं है इस नाक से, वो उसको ठीक ठाक करना चाहता है, हथौड़े मार मार कर, फाइन स्ट्रोक्स, उसको ये आंखें पसंद नहीं है, वो चाहता है कि सबसे ब्यूटीफुल आंखें बने। कांटों का जंगल, काटा चुबाना चालू है। बाबा ने कहा जो सत्य है उसका उदाहरण है कृष्ण। क्या बनना चाहोगे, कृष्ण या राम? सबको कृष्ण बनना है। राम अर्थात, राम अर्थात हे खग मृग मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नयनी। सीता के पीछे दुखी है, कभी तो बहुत खुश है, कभी दुखी है, वियोगी है। और श्री कृष्ण, अधरम मधुरम वदनम मधुरम चलितम मधुरम चलितम मधुरम चरितम मधुरम मदिराधिपति अखिलम मधुरम। सब कुछ मधुर ही मधुर है, जिसका जो नाच रहा है उसके जीवन में कहीं दुखी नहीं है। कृष्ण को कभी दुखी नहीं दिखाया है पूरे महाभारत में, जब वृंदावन में है तब भी, जब छोड़ के जा रहा है गोकुल तब भी दुखी नहीं है। महाभारत में सब मर रहे हैं पर वो दुखी नहीं है, संपूर्ण साक्षी है वो, इसलिए दुखी नहीं है। सच तो बिठो नच, जो सत्य होगा वो नाचेगा। जिसके अंदर सत्यता की शक्ति होगी वही नाच सकेंगे, और जिसमें नहीं है वो आंगन को दोष देंगे। जहरीला वायुमंडल, विकराल माया, भयानक परिस्थितियां और परेशान करने वाले रिश्तेदार, ब्राह्मण रिश्तेदार। ईश्वरीय परिवार के रिश्तेदार, अलौकिक कुटुंब के भांति बहुत हिसाब किताब है उनके साथ। तो ये पहली निशानी निर्भय, दूसरी निशानी बेफिक्र, तीसरी निशानी सच तो बैठो नच। और जो असत्य होगा उसमें उलझन होगी, जिसमें व्यर्थ होगा उसमें उदासी होगी, ये तीन चीजें बाबा ने कही। चौथी निशानी महसूसता की शक्ति होगी। क्या होगी उनमें? महसूसता की शक्ति होगी। दुनिया वालों से छिपा सकते हो परंतु बाप और स्वयं से नहीं छुपा पाओगे। जो कुछ जीवन में हो रहा है सभी से छुपाया जा सकता है पर बाबा से छिपा सकते हैं? He that planted the eye shall he not see? He that planted the ear shall he not hear? जिसने आंख दी क्या वो ना देखेगा? जिसने कान दिया क्या वो ना सुनेगा? बाइबल में लिखा है He that seeth everything, He that heareth everything। भक्ति में कहते हैं चींटी को अगर घुंघरू हो तो वो आवाज भी उस तक पहुंचती है। मैं निराकार साकार महावाक्य इन्वर्टेड कॉमा सब कुछ जानता हूं। मैं निराकार सब कुछ जानता हूं, एक एक को जानता हूं और इस जन्म को नहीं सारे जन्मों को जानता हूं। सब जानता तू तिक्ता तकदीरे। तो चौथी निशानी महसूसता की शक्ति, पांचवी निशानी सत्य के सामने असत्य टिक नहीं सकता। जिसमें सत्य होगा उसके सामने असत्य टिक नहीं सकेगा। सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद कहता है। इसके लिए उपनिषदों ने प्रार्थना भी क्या की है, असतोमा सत्यमय, असत्य के साम्राज्य से मुझे सत्य की ओर ले चल। जो असत्य है, जो झूठ है, यह शरीर सबसे बड़ा झूठ है और शरीर के भोग और शरीर की वासनाएं और शरीर के आकर्षण यही सबसे बड़ा झूठ है। जब तक यह झूठ सर्वांग रूपेण समझ में ना आ जाए तब तक चेतना शरीर को ही सत्य मानती है और झूठ में फंसी रहती है। इसके लिए उपनिषद का ऋषि चिल्लाता है चट्टान पर से, असतोमा सत्यमय, मुझे सत्य की ओर जाना है। बहुत असत्य में जी लिया, बहुत झूठ में जी लिया, क्या मिला? बेचैनी, दर्द, दुख, भय, आदत, कंफ्यूजन, व्यर्थ, उदासी। छठवीं निशानी सत्य की नाव हिचकोले खाएगी, हिलेगी डुलेगी परंतु डूबेगी नहीं। उदाहरण कौन सा दिया? जैसे जैसे खेल करते हैं, नीचे जाते हैं ऊपर जाते हैं, वो नीचे जाना भी उनको क्या लगता है? खेल। तो ये गिरना भी क्या लगेगा? खेल। और अंदर से सोचेंगे मेरी जीत हो रही है, मैं विजयी आत्मा हूं क्योंकि सत्य की नाव पर सवार है। मैं किस नाव में बैठा हूं? हर एक अपने आप से प्रश्न पूछे, किस नाव पर मैं बैठा हूं वो कौन सी नाव है? सत्य की है या असत्य की है? दुनिया को छला जा सकता है, ब्राह्मण परिवार को धोखा दिया जा सकता है पर स्वयं को, भगवान को? यदि भगवान ही आकर आरोप लगा दे तो हम भगवान के सामने सफाई देंगे कि शायद आपको कुछ गलतफहमी हुई हो, तो मी नवेस मैं वो नहीं हूं, ऐसा कह पाएंगे? शायद नहीं। अगर हमने ये कह दिया कि मैं वो नहीं हूं तो बाबा ऑडियो सुना देगा। हम कहेंगे मेरी आवाज नहीं है तो बाबा के पास वीडियो भी है, फिर क्या करोगे? बाबा के पास टीवी है, बाबा ने कई बार कहा है सूक्ष्म वतन में बेहद की टीवी है, सब देखता रहता है। यहां पर किसी का कुछ भी छिपा नहीं है, यह दाता का दरबार है। इसलिए कर गुनाहों से तौबा, चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा। तो ये छह बातें हैं सत्य की निशानी। अभी मूल्य की शुरुआत, दस बातों की चर्चा की है बाबा ने। सबसे पहले सत्यता की शक्ति क्या करती है, सत्यता की शक्ति अचल है और अविनाशी है। वो जो राज्य सत्ता है वो हिलती है, और सत्यता की शक्ति कैसी है, ईश्वरीय सत्ता कैसी है, अचल है, कभी नहीं हिलती है, अविनाशी है। दो शब्दों का प्रयोग मुरलियों में आया है, एक है सत्य एक है सत। सत अर्थात अविनाशी, सत अर्थात जो तीनों कालों में सत्य रहता है उसे सत कहा जाता है, जो बदलता नहीं। तीन काल में जो सत्य है उसे सत्य कहा गया है। तो सबसे पहली बात कि यह ईश्वरीय सत्ता कैसी है, अविनाशी है। कोई एक धर्मात्मा राजा था जिसके राज्य में उसने एक ऐसा नियम बनाया था कि राज्य में जितने लोग हैं जो बिक्री करते हैं, खरीदारी दुकानदारी करते हैं, उनके दुकान में जो छोटे मोटे दुकान है, शाम के अंत तक अगर कुछ बच जाता है सामान तो वो मैं खुद खरीद लूंगा। यह नियम था। राज्य के सैनिक शाम को निकलते थे और जिसके पास जो भी बच गया, जिसके पास सब्जी बच गई, अब कोई खरीदने वाला नहीं है, तो राजा के सैनिक ले लेते थे और उसको यथोचित दाम दे देते थे। ये उसका नियम था और इसकी दृढ़ प्रतिज्ञा थी कि मेरे राज्य में कोई भी विपन्न ना रहे, कोई भी दरिद्र ना रहे, सभी संपन्न हो। धर्मराज स्वयं उसकी परीक्षा लेने आते, एक ब्राह्मण का रूप धारण करते हैं, ऐसा दिखा है। काल्पनिक कहानियां हैं, कहानी झूठी है, और जो सीखना है उससे कहानी का झूठा होना और सत्य होने से कोई मतलब नहीं है। कई बार झूठी कहानियां ही सत्य सिखा देती है। तो वो जो ब्राह्मण होता है सारे शहर भर का कूड़ा करकट जमा करता है, टूटी फूटी वस्तु एक पेटी में भरता है और लेके बैठता है दिन भर, कौन खरीदेगा। और राज्य के सैनिक नियमानुसार आ जाते हैं और वो कहता है कि आपका कुछ बिका, बोलता है कुछ नहीं बिका, ये मेरा है बेचने का। तो सैनिक देखते हैं तो हंसते, ये कौन खरीदेगा। तो वो कहता है ठीक है नहीं खरीदे तो मैं जा रहा हूं। वो कहता है रुको रुको, हम राजा से पूछ के आते हैं। राजा कहते हैं ये तो नियम भंग हो जाएगा, मेरी प्रतिज्ञा है जो कुछ है थोड़ा बहुत दाम दे दो और खरीद के लेके आओ कूड़ा करकट। तो सैनिक जाते हैं और पूछते हैं क्या दाम है। वो कहता है 1,000। ये तो बहुत ही ज्यादा बता रहे हो, ये तो कोई वैसे भी नहीं लेगा। वो कहते 200 में दे दो, चलो कोई नहीं। वो कहता है नो, 1,000 से एक पैसा भी कम नहीं लूंगा। वो कहते 500 दे दो। वो कहते हैं ना। वापस सैनिक राजा के पास जाते हैं कि वो नहीं मान रहा, क्या करे। राजा कहता है 1,000 में लेके आ जाओ। और 1,000 में क्या लेके आ जाते हैं, टूटी फूटी वस्तुएं कूड़ा करकट, और राज्य के वहां रख देते हैं। शाम होती है, रात होती है, राजा सोया हुआ है, अचानक आंख खुलती है, एक स्त्री गेट से बाहर जा रही है, कभी देखा नहीं था उसको। राजा कहता है आप कौन हो और जहां कहां रही हो। वो कहती है मैं लक्ष्मी हूं, अब तक आपके पास रहती थी पर जिस घर में दारिद्र्य है वहां मैं नहीं रह सकती, इसके लिए मैं जा रही हूं। राजा कहता है ठीक है जाओ। थोड़ी देर के बाद एक नवयुवक उस दरवाजे से बाहर जाने लगता है। राजा कहता है कौन हो तुम। वो कहता है मैं दान हूं, अब जिस घर में लक्ष्मी नहीं तो मेरा क्या काम, मैं जा रहा हूं, दान भी जा रहा है। थोड़ी देर के बाद और एक युवक जा रहा है। राजा कहता है तुम कौन हो? वो कहता है मैं यश हूं। जहां दान नहीं, जहां लक्ष्मी नहीं, वहां यश कैसा है? मैं भी जा रहा हूं। थोड़ी देर के बाद और एक युवक जा रहा है, राजा पूछता है तुम कौन हो? वो कहता है यज्ञ हूं। जहां लक्ष्मी नहीं, दान नहीं, यश नहीं, वहां यज्ञ कैसे होगा? मैं भी जा रहा हूं। थोड़ी देर के बाद और एक व्यक्ति जा रहा है, राजा पूछता है तुम कौन हो? वो कहता है मैं सत्य हूं। राजा कहता है तुम नहीं जाओ। वो कहता है क्यों नहीं जाओ, ये सब चले गए, मैं उनके पीछे जा रहा हूं। राजा कहता है तुम्हारे लिए ही तो मैंने इन सबको छोड़ दिया, तुम थे, मेरी प्रतिज्ञा थी, इसलिए तो ये सब चले गए। और वो कूड़ा करकट अंदर आ गया। तुम रुक जाओ, बहुत उससे विनती करता है। सत्य कहता है चलो ठीक है मैं रुक जाता हूं, और सत्य रुक जाता है। थोड़ी देर के बाद एक स्त्री आती है, और थोड़ी देर के बाद वो तीन पुरुष आते हैं। राजा पूछता है क्या हुआ? वो कहता है बिना सत्य के हम कैसे रहेंगे? जहां सत्य है वहां लक्ष्मी है, जहां सत्य है वहां यज्ञ है, जहां सत्य है वहां यश है, जहां सत्य है वहां दान है, जहां सत्य है वहां सर्वस्व है। हमारे जीवन में क्या है? बाबा ने आज की मुरली में पूछा है सत्य के साथ कहीं असत्य मिक्स तो नहीं है? सत्य भी है और साथ साथ असत्य भी है, साथ साथ चल रहे दोनों। स्वयं को चेक करना है। धर्मराज प्रकट होते हैं, कहता है मैं प्रसन्न हूं, तुमको क्या चाहिए? वो कहता है मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, सब कुछ है, बस अपनी कृपा मुझ पर बनाए रखना। शिव बाबा आज यहां आ जाए और पूछे कि क्या क्या चाहिए, क्या क्या मांगेंगे? थोड़ी सी, थोड़ा सा पैसा, घर, दुकान, बेटे को नौकरी, इंटरव्यू में पास हो जाए, ऐसा तो नहीं मांगेंगे? कुछ नहीं चाहिए, सब दे दिया है, सब पा लिया है, कुछ भी नहीं चाहिए उससे। तो सत्य की सबसे पहली बात, सत्य अविनाशी है और अचल है, सत्यता की अथॉरिटी। दूसरा, बाबा ने कहा ईश्वरीय सत्य सत्ता जो है वही सत्यता की अथॉरिटी है, और ये दी किसने है? सत्य बाप, सत्य सत्य शिक्षक और गुरु, सत्य गुरु। स्वयं जो सत्य है, सत्य का सागर जो है, जो परम सत्य है संसार का, उसने ये दिया है, उसकी ये अथॉरिटी है। ये दूसरी बात। तीसरा, सत्यता की अथॉरिटी कहां ले जाती है हमें? सचखंड। कहां ले जाती है? सतयुग में ले जाती है। चौथा, सत्यता हमें अविनाशी वर्षा, अविनाशी पद पढ़ाई के आधार से, और अविनाशी वरदान देता है। यदि वरदान नहीं मिल रहे हैं, यदि वरदानों का अनुभव नहीं हो रहा है, जरूर आत्मा में खोट है, आत्मा में असत्य छिपा हुआ है। जैसा तक असत्य को उखाड़ कर फेंक देना है। मधुबन सतभूमि है, ये सत्संग है, जहां आज हम बैठे हैं, यहां बैठे बैठे ही ये बातें सुनते सुनते ही मन में अभी अभी संकल्प कर लेना है कि जो जो असत्य दिखाई पड़ रहा है, अभी अभी देख लो सारे जीवन को, अभी अभी देख लो सारे ब्राह्मण जीवन को, मन की आंखों से ये शब्द सुनते सुनते ही संकल्प कर लेना, प्रतिज्ञा कर लेना कि जो जो जीवन में असत्य है उसे उखाड़ कर फेंक देंगे, जिस जीवन में असत्य आया है उसको इस मार्ग से पदाक्रांत कर देंगे, ऐसा दृढ़ संकल्प उखाड़ के फेंक देंगे। और ये प्रतिज्ञा सत्य होगी, क्योंकि कहां की जा रही है? तीर्थ स्थान पर। कहां की जा रही है? इतनी सारी ब्राह्मण आत्माओं के बीच में की जा रही है। वो असत्य कुछ भी हो सकता है, वो असत्य कोई संकल्प हो सकता है, वो असत्य जीवन में चल रहा कोई संबंध हो सकता है, वो असत्य कोई कल्पना जो बार बार आती है, असत्य कोई यादें हो सकती है, कोई चिंता हो सकती है, वो असत्य कोई चलन हो सकती है, कोई बोल हो सकता है, कोई कर्म हो सकता है, वो असत्य कुछ लिखना हो सकता है, कोई मैसेज, कुछ खाना हो सकता है जो नहीं खाना है पर खा रहे हैं, कुछ सुनना हो सकता है, कुछ देखना हो सकता है जो देखना ही नहीं है फिर भी देखा जा रहा है, रात रात जाग रहे और देख रहे जो देखना ही नहीं है। सत्य चौथा सत्यता की अथॉरिटी क्या करती है, अविनाशी वरदान, अविनाशी पद और अविनाशी वरदान देती है। पांचवा, आदि से अंत तक भक्ति मार्ग में क्या बन जाओगे, पूजनीय और गायन योग्य बनेंगे अभी सत्यता की अथॉरिटी से। यदि पता चल गया कोई मंदिर की कोई देवी झूठ बोलती है तो लोग जाएंगे क्या उसके पास, मंदिर में आना बंद हो जाएगा लोगों का। जागृत देवता अर्थात उसके सामने जो कहो वो सत्य हो जाता है, मन्नते दुआएं इसलिए जाते हैं, अगर पता चल जाए झूठी है तो बंद। बाबा ने कहा आदि से अंत तक क्या होगा, गायन होगा, पूजन होगा, जो द्वापर से हम कहेंगे सतवचन महाराज होगा, ये पांचवा। तो सभी स्थिर होके बैठेंगे, अगले तीन मिनट अपने संपूर्ण जीवन को एक विशाल पर्दे पर देख लेंगे और जहां जहां असत्य है, जहां जहां असत्य की छाया है, उस छाया को अपनी शक्तिशाली किरणों से भस्म कर देंगे, जैसे परम पिता परमात्मा जो संपूर्ण सत्य है उसकी सत्य किरणें मुझ पर आ रही है और मुझ में ये समा रही है और मुझसे उस स्क्रीन पर फेंकी जा रही है, जिससे जो जो असत्य के बादल है, छाया है, परछाई है, वो सब भस्म हो रही है। इसका प्रयोग करेंगे।
ध्यान कीजिए।
सेवा, स्वयं को जाना और बाप को जाना, इस सत्यता की ऑथोरिटी से क्या जाना, मैं कौन हूं, स्वयं के सत्य स्वरूप को जाना और उसके सत्य स्वरूप को जाना। अब तक अपने आप को क्या समझते थे और उसने आके क्या बता दिया, उसके महावाक्यों पर विश्वास, निश्चय, शब्द शब्द पर निश्चय, वो कहता है तुम ये हो, वो कहता है तुम ऐसे हो, उसके वाक्यों पर विश्वास निश्चय, और अपने लिए भी जाना और दूसरी आत्माएं उनको भी जाना। व्यक्ति अपने को तो जानता है पर दूसरों को शायद गलत जानता है, नहीं पहचान पाता। जैसे एक ट्रेन जा रही है, इस ट्रेन में एक पिता है और उसका एक बेटा है 20 साल का, सफर कर रहे हैं और सामने एक युगल बैठे हैं। वो जो 20 साल का बेटा है तालियां बजाता है और कहता है पिताजी पिताजी देखो ये जो घर है पीछे पीछे जा रहे हैं। थोड़ी देर में फिर तालियां बजाता है, कहता है पिताजी पिताजी देखो ये बादल पीछे जा रहे हैं। फिर तालियां बजाता है, कहता है ये जमीन पीछे जा रही है। जो सामने युगल बैठे हैं वो उनको बड़ी दया आती है, इतना बड़ा बेटा, वो कहता है इसको किसी डॉक्टर के पास क्यों नहीं ले जाते आप अच्छे से डॉक्टर के पास। वो कहते हैं हम डॉक्टर के पास से ही तो आ रहे हैं, ये जन्मांध था, बॉर्न ब्लाइंड, आज ही ऑपरेशन हुआ है, आज ही उसको रोशनी मिली है, पहला ही दिन है वो दुनिया को देख रहा है, कैसे आश्चर्य से भरा है, हर चीज आश्चर्यचकित करती है उसको, बादल, घर, जमीन, ट्रेन। शायद जो हम देख रहे हैं वही संपूर्ण सत्य नहीं है, जो दिखाई दे रहा है आंखों से दिखाई दे रहा है, चश्मदीद गवाह है हम, फिर भी झूठे। इसलिए निष्कर्ष पर तुरंत नहीं पहुंचना, संसार में, विवाह में, मैरिड लाइफ में जितने डिवोर्स और झगड़े हैं उनका एक कारण है संदेह, डाउट, किरदार पर शक। सातवां, सत्य जहां है वहां असत्य का अंधकार नहीं रह सकता, असत्य अंधकार है, असत्य का अंधकार वहां नहीं रह सकता, सत्य प्रकाश है, उस सत्य को अंदर धारण करना है। सूर्य है और जिसके चरित्र में सूर्य है, सत्य है, उसे भय नहीं है। और जहां भय है और असत्य है वहां जरूर कुछ गड़बड़ है। आठवां, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य सुंदर है और शिव है, तीन शब्द है, सत्यम शिवम सुंदरम, अर्थात सत्य जो है वो शिव है और वो सुंदर है, सत्य ही भगवान भी है और सत्य सुंदर है। दूसरा शब्द है सत्यम शिवम, शिव जो है वो सुंदर है और सत्य है। सुंदरता, सच्ची सुंदरता सत्य है, सत्य सुंदरता शिव है, शुभ है। तीन शब्दों, पहले शब्द का अगले दो शब्द अर्थ है, दूसरे शब्द का आगे पीछे के दो शब्द अर्थ है, तीसरे शब्द का पहले दो शब्द अर्थ है। ट्रू ब्यूटी इज ट्रुथ, ट्रुथ ब्यूटी, और जो सत्य है उसी में सौंदर्य है, और जो शिव है उससे अधिक संसार में कोई और सुंदर नहीं है, हसीन मुसाफिर, उससे अधिक सुंदर हसीन इस संसार में कोई नहीं है। सभी में दाग है, शरीर भले गोरा हो पर आत्मा काली है। एक वही सौंदर्य का सागर है। नौवा, सत्यता की अथॉरिटी माया जीत और प्रकृति जीत बना देती है। कितनी बड़ी बात बोल दी, सारे विकारों से मुक्ति हो जाएगी अगर एक सत्य बोलना चालू करे तो। एक धार्मिक व्यक्ति था पर उसे बहुत सारी बुरी आदतें थी, सारे व्यसन थे, चोरी भी करता था परंतु फिर भी धार्मिक कहलाता था। अपने गुरु के पास एक दिन गया, कहने लगा मुझ में सारी बुराई है, मैं क्या करूं, कुछ तो ऐसी युक्ति बताओ। वो कहता एक ही काम करना बस, सत्य बोलना बस, इतना करो, बाकी जो करना है करते रहो, चोरी करते रहो, दारू पीते रहो, वो सब चालू रखना, वो रोवत रोकना बिल्कुल, वो जो चल रहा है सेम चलना, खाली सत्य बोलना। गुरु भी फंसाते हैं बड़ी अपनी युक्ति से शिष्य के कल्याण के लिए। वो जाता है, शाम होती है, दारू पीने की इच्छा होती है, कहता है अगर पीऊंगा तो गुरु को तो बताना पड़ेगा और लोगों को भी बताना पड़ेगा कि मैंने पिया और मैं हूं धार्मिक, लेबल लगाया है, बैच है। कहता है नहीं 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 नहीं, रात होती है, चोरी खींचती है, घर दिखाई देने लगते, सोने दिखाई देने लगते, सोचते हैं अगर जाऊं तो बताना पड़ेगा और लोगों को भी बताना पड़ेगा। गुरु सामने दिखता है, किसने कहा मुझे, और धीरे धीरे सभी व्यसनों से छूट जाता है। जब भी कंफ्यूजन हो, बाबा को ही सामने देख लेना, खड़ा है, उसको पूछना क्या करूं, क्या किया जाए, उत्तर आएगा। सच्ची दिल से अगर पूछा गया तो, और सद्गुरु का थोड़ा सा डर भी हो, खुदा की लाठी बेजुबान है, पड़ेगी एक दिन। दसवां, जहां से क्लास की शुरुआत की थी, सत्यता की निशानियां, छह निशानियां कौन कौन सी, जो सत्य होगा वो निर्भय, जो सत्य होगा वो निश्चिंत बेफिक्र, जो सत्य होगा वो नाचेगा, जो सत्य होगा वो महसूसता की शक्ति होगी उसमें जानेगा, जो सत्य होगा वो असत्य टिक नहीं सकेगा, और लास्ट जो सत्य होगा वो उसकी नाव हिलेगी डुलेगी, बहुत परिस्थितियां आएगी जीवन में परंतु विश्वास है, निश्चय है कि जिस नाव में मैं हूं और भगवान है वो डूब नहीं सकती। बाइबल में उदाहरण है, गलीली की झील है जिसमें जीसस क्राइस्ट अपने 12 शिष्यों के साथ जा रहा है, जीसस क्राइस्ट सोया पड़ा हुआ है और वो अचानक तूफान आ गया है नाव में, सारा पानी नाव में भरने लगा है, सारे शिष्य घबरा जाते हैं कि अब डूबे की डूबे, इतना भयंकर तूफान है। फिर देखते हैं कि उनका जो मालिक है, उनका जो स्वामी है, उनके जो गुरु है, रबाय जिसको कहते हैं, वो तो सोया पड़ा है, उसको उठाते हैं कि रबाय सेव अस। जीसस उठता है और ऐसा आवाज करता है और कहता है पीस बी स्टिल, हे तूफान शांत हो जा, और तूफान शांत हो जाता है और सब कुछ स्थिर हो जाता है। फिर वो एक बात कहता है अपने शिष्यों से, कहता है ओ ई ऑफ लिटिल फेथ, हे कम ईमान वालों, इतना भी विश्वास नहीं जिसमें मैं बैठा हूं वो नाव कभी डूबेगी, क्यों इतने हलचल में आ गए, क्या भूल गए इस नाव में कौन था। हे कम ईमान वालों, कहां गया तुम्हारा ईमान, वेयर इज दाय फेथ, ओ ई ऑफ लिटिल फेथ, यही ईमान है तुम्हारा, ये भी भूल गए कि नाव को चला कौन रहा है, किस नाव में कौन बैठा है। संगम की नाव स्वयं भगवान चला रहा है जिसमें हम बैठे, डूब नहीं सकते, बाप कल्याणकारी, समय कल्याणकारी, इस ड्रामा में तुम्हारा कल्याण हो नहीं सकता, जिसको जो करना है करने दो, तुम्हारे कल्याण की ही नूंद है। तो ऐसी 10 बातें थी, फिर से रिवाइज करते हैं। पहला, ईश्वरीय सत्ता कैसी है, अविनाशी और अचल। दूसरा, ईश्वरीय सत्ता को ही सत्यता की अथॉरिटी कहा जाती है, जो किसने दी है, सत्यता की शक्ति कहा जाती है, जिसे किसने दिया है, सतबाप, सत्य शिक्षक, सतगुरु। तीसरा, ईश्वरीय सत्यता की शक्ति जो है वो कहां ले जाती है, सचखंड, सतयुग। अगला, चौथा, ईश्वरीय सत्यता की शक्ति जो है वो क्या करती है, वरदान, वर्षा, पद, पढ़ाई के आधार से प्राप्त कराती है। पांचवा, भक्ति में गायन, पूजन। छठवा, अपने आप को जाना और उसको जाना। सातवा, अंधकार को समाप्त किया। आठवा, सत्यम शिवम सुंदरम, भक्ति में गायन है बाबा ने कहा। और नौवा, प्रकृति जीत और माया जीत बनाती है। और दसवा, सत्यता की छह निशानियां। इसी मुरली में बाबा पूरी रात रहे। सुबह सद्गुरुवार था और सद्गुरुवार को चार वरदान दिए। कौन कौन से, कौन बताएगा? मुरली पूरी रात भर चली, कितने सारे, बाबा ने कहा ये विस्तार कभी और बताएंगे, आज मिलने वाले बहुत है। पूरी रात चली होगी मुरली, एक 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 से मिले, एक एक से कितनी बातें की, वो तो सब रिकॉर्डेड नहीं है, ना ही प्रिंटेड है। रात भर, सुबह सुबह सद्गुरुवार था, चार वरदान दिए। कौन से? सफलता मूर्त भव, अमृत वेले देखना है, उसने सीधा हाथ ही रख दिया, सफलता मूर्त भव, असफलता हो नहीं सकती। दूसरा, उमंग उल्लास, उत्साह का वरदान दिया। तीसरा, एक बल एक भरोसा के आधार से क्या, हर सीन को साक्षी होकर देखना। अगला, कौन बताएगा? मुरली पड़ी है ना, अभी 12 घंटे भी नहीं हुए पूरे। कौन सा वरदान दिया? कौन सा वरदान दिया? याद प्यार से पहले क्या 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 वो वरदान नहीं, मुरली के अंदर का वरदान, सत्वचन वाला वरदान नहीं, शुभ बोल वो वाला वरदान नहीं, मुरली में कौन सा है? विजयी भव। निश्चय के फाउंडेशन को क्या, निश्चय का, कि निश्चय का वरदान दिया है। ये चार वरदान है, सफलता, उमंग उत्साह, निश्चय और साक्षी। तो सुबह हुई और फिर बाबा ने गुड मॉर्निंग की मुरली, बाबा आए होंगे शाम को 6 बजे, रात भर ये मुरली चली है। इतने सारा समय भगवान धरती पर था, इस सृष्टि पर, तब ये महावाक्य चले। हमने कितनी बार पढ़े दिन भर और कितना याद रखा, तो उसके वाक्यों का चिंतन करना है, मनन करना है, अध्ययन करना है, उसमें डूबना है, अपने आप को उसमें समाना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। ऐसे कैसे, सत्य बाप के सत्य स्वरूप बच्चों को, ऐसे उमंग उल्लास में रहने वाले बच्चों को बोलते जाओ, ऐसे। पूरी मुरली सुनी ना, वो नहीं बोलना है जो हम बोल रहे हैं, अपना बोलना है। ऐसे अचल अडोल रहने वाले बच्चों को, ऐसे सदा साक्षी होकर हर दृश्य को देखने वाले बच्चों को, ऐसे ऐसे निश्चय बुद्धि बच्चों को, ऐसे ऐसे विजयी आत्माओं को, ऐसे पूजनीय आत्माओं को, गायन योग्य आत्माओं को, ऐसे निश्चिंत आत्माओं को, बेफिक्र बादशाह आत्माओं को, ऐसे सदा नाचने वाले सच तो विठो नच आत्माओं को, ऐसे मायाजीत प्रकृति जीत आत्माओं को, ऐसे एक बल एक भरोसा वाली आत्माओं को, ऐसे महसूसता की शक्ति को धारण करने वाली आत्माओं को, ऐसे विकराल परिस्थितियां, नहीं जहरीली जहरीला वायुमंडल, विकराल माया, भयानक परिस्थिति और संबंध संपर्क वाले परेशान करने वालों में भी इनको क्या समझना, स्टेज, तो अपने घर को क्या समझना, स्टेज, और वहां पर क्या करना है, डांस। कालिया नाग के ऊपर डांस किया ना, कालिया मर्दन, वो सारा जल यमुना का विषाक्त कर दिया था, वहां पे बबल्स इतने उसमें जहर था, कोई नहीं आता था उस नदी के पास, एक ही कदम का वृक्ष था बस। तो ऐसे परिस्थिति में भी नाचना, ये हमारा यादगार है। ऐसे राम न बनने वाली आत्माओं को, कृष्ण बनने वाली आत्माओं को, ऐसे निश्चय का फाउंडेशन पक्का करने वाली आत्माओं को, ऐसे निर्भय रहने वाली आत्माओं को, ऐसे असत्य के अंश को उखाड़ कर फेंकने वाली आत्माओं को, ऐसे अचल अडोल आत्माओं को, ऐसे अविनाशी पद, अविनाशी वर्षा और अविनाशी वरदान प्राप्त करने वाली आत्माओं को, ऐसे कौन सा तपस्वी स्वरूप आत्माओं को, सत्यम शिवम स्वरूप में स्थित होने वाली आत्माओं को, और ऐसे डैश 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 आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। ओम शांति।